इशिका सिंघानिया विला में डिनर करने के लिए आई थी। हालांकि अभिमन्यु ने उसे बाद में ज्वाइन करने को कहा था, इशिका अकेले ही वहां गई थी। डाइनिंग टेबल पर आयशा के साथ बहस हो जाने की वजह से इशिका वहां ज्यादा देर नहीं रुकी और बिना डिनर किए ही वापस से चली गई थी। वहीं इशिका के जाने के बाद जब नक्श और आयशा घर जाने लगे, उन्हें छोड़ने के लिए आदर्श और राधिका बाहर आए थे। उसी वक्त एक हाउस हेल्पर दौड़ते हुए अंदर आई। उसने बताया कि इशिका का पति वहां आया है। हाउस हेल्पर के चेहरे पर इस तरह घबराहट के भाव देखकर आदर्श ने सख्ती से कहा, वो इशिका का पति ही है, कोई टेररिस्ट नहीं जो तुम इस तरह डरी हुई हो। नहीं, वो बात नहीं है, अचानक से अंधेरे में उन्हें देखा तो घबराहट हो गई, वो थोड़े अजीब है, हाउस हेल्पर ने सिर झुकाकर जवाब दिया। थोड़ी देर पहले आता तो इशिका से भी मिल लेता, चलो हम उसका वेलकम करने के लिए चलते हैं, राधिका ने जवाब दिया और उन सबको अपने पीछे आने को कहा। इशिका के हस्बैंड को नक्श और आयशा कब से देखना चाहते थे, तो वो दोनों बिना किसी शिकायत के बाहर की तरफ आने लगे। अचानक उनके सामने एक आदमी खड़ा था जो लगभग 27 साल के आसपास था और 6 फीट लंबा था। उसने वर्कर्स वाली ऑरेंज ड्रेस पहनी हुई थी। ये वही था जिसको इशिका ने शाम को छाता दिया था। कंस्ट्रक्शन साइट को चेक करते वक्त उसके चेहरे पर कीचड़ और धूल मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन अब वो अपना मुंह धोकर आया था। हालांकि उसके कपड़े अभी भी गंदे थे। वो देखने में हैंडसम था, गोरा रंग और अलग तरह की नीली आंखें। उसका नाम निक मार्टिन था। उन लोगों को देखते ही निक आगे आया और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, क्या मैं इशिका से मिल सकता हूँ? वो अंदर है, तो प्लीज आप उसे बाहर बुला दीजिए। निक हिंदी जरूर बोल रहा था, लेकिन उसके एक्सेंट में विदेशी टच था। वो एक बिजनेस टाइकून था जो किसी प्रोजेक्ट के चलते इंडिया आया हुआ था। आयशा ने उसकी तरफ मुंह बनाकर देखा और धीरे से कहा, एक तो ये दिखने में इतना वियर्ड सा है, ऊपर से इसके लैंग्वेज और एक्सेंट भी अजीब है। नक्श गुस्से से उसे घूर रहा था। उसने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, तो उसने किसी मजदूर से शादी की है? जो भी हो, उसे अच्छा लड़का नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चाचू से चिपकी रहे। आदर्श को भी निक इशिका के हस्बैंड के तौर पर पसंद नहीं आया था। वो बोला, अब वो इस घर में भी नहीं रहती है और इन दोनों की शादी भी हो गई है, कुछ कह भी नहीं सकते, कम से कम थोड़ा तो देखकर शादी करती। निक की परवाह किए बिना वो उसे भला बुरा सुनाने लगे। राधिका ऐसा नहीं सोचती थी। वो निक के पास गई और हल्का मुस्कुराकर बोली, आप इशिका को लेने के लिए आए हैं, लेकिन वो तो यहाँ से जा चुकी है। क्या, जा चुकी है? निक ने मायूसी से कहा। फिर वो कुछ पल रुककर बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊँगा। निक वहाँ से जाने वाला ही था कि तभी आयशा ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट, मैं इशिका की बहन हूँ, इस तरह से आपसे भी एक रिश्ता बन गया है, हम नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। निक ने उसकी बात पर हामी भर दी। नंबर एक्सचेंज करने के बाद वहाँ से जाने लगा। आयशा ने उसे बाय करते हुए कहा, मैं आपको मैसेज करूँगी। निक के वहाँ से जाते ही आदर्श ने कहा, अब समझ आ रहा है कि अब तक उस लड़की ने अपने पति से हमें मिलवाया क्यों नहीं था, और मालविका ये क्यों कहती थी कि इशिका का पति किसी काम का नहीं है। किसी की भी शक्ल देखकर उसे जज मत कीजिए, अभी उन दोनों की उम्र ही क्या है, इशिका ने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है तो ये भी एक दिन कुछ बन ही जाएगा, राधिका ने उसे समझाते हुए कहा। आयशा हंसते हुए बोली, कम ऑन मॉम, वो एक मजदूर है और अगर हम उसकी मदद भी कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक ठेकेदार बन जाएगा। उसकी और मदद करने के लिए जब भी हमारा घर रेनोवेट होगा तो हम उसे काम दे देंगे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। सोच समझकर बात करो आयशा, राधिका ने उसे डांटा। आयशा ने तुरंत सॉरी कहा और फिर कुछ देर की बातचीत के बाद वो नक्श के साथ वहां से चली गई। सिंघालिया मेंशन में नक्श ने इशिका को कुछ नहीं कहा, लेकिन गाड़ी में बैठते ही नक्श से रहा नहीं गया। वो आयशा से बोला, नंबर एक्सचेंज करने की क्या जरूरत थी, अब तुम राजवंश खानदान की बहू बन चुकी हो, ऐसे छोटे लोगों को कौन ऐड करके रखता है। आयशा अपने मोबाइल में लगी हुई थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। उसने नक्श की तरफ देख कर कहा, याद है ना कल तुम प्रोफेसर मिलर का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हो, वहां हमारे क्लासमेट्स भी होंगे और एक यूनियन पार्टी भी, मैंने सबसे मजाक में कह दिया था कि कोई अपनी फैमिली को भी बुला सकता है, तो हम इसे वहां पर बुलाएंगे और फिर तुम जानते हो ना क्या होगा। हर बार की तरह तमाशा लगाने के लिए आयशा पूरी तैयारी कर रही थी। उसके बाद आयशा ने अपनी निक के साथ चैट दिखाई। उसने रियूनियन पार्टी का कहा और ये भी बोला कि इशिका भी वहां आने वाली है, तो निक ने तुरंत हाँ कह दी थी, वैसे भी वो इशिका से बात करना चाहता था। नक्श आयशा का प्लान समझ गया था, उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी और अब वो पार्टी की ओर जोरों शोरों से तैयारी करने लगा। सिंघानिया मेंशन में सबके जाने के बाद शांति हो गई थी। राधिका ऊपर अपने कमरे में पहुंची तो वो अकेली थी, जबकि हर वक्त उसके साथ में श्रुति रहती थी। श्रुति को वहां न देखकर आदर्श ने पूछा, श्रुति कहां गई? वो मैंने उसे अपने किसी काम से बाहर भेजा है, देर तक आएगी, राधिका ने जवाब दिया। उसने उसी समय डीएनए टेस्ट करवाने के लिए श्रुति को भेज दिया था। आदर्श ने भी इस बारे में आगे नहीं पूछा क्योंकि राधिका श्रुति को अपने काम से बाहर भेजती रहती थी। उन्होंने हां में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर मैं स्टडी रूम में हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। उसके बाद आदर्श स्टडी रूम में आ गए तो वहीं राधिका श्रुति का वेट करते हुए लिविंग एरिया में थी। उन्होंने शॉल ओढ़ रखा था ताकि हल्की सी भी ठंड लगने पर उन्हें खांसी ना आए। आज जो भी हुआ था राधिका उसके बारे में सोच रही थी। उन्हें मन ही मन आयशा के बर्ताव पर गुस्सा भी आ रहा था और पछतावा भी हो रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, अफसोस कि मैं उसे ठीक से पालने में नाकामयाब रही और वो आज इस हद तक गिर गई है कि लोगों के खिलाफ साजिशें करती है, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। राधिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसे बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दी। श्रुति लौट चुकी थी। श्रुति आते ही सीधे राधिका के पास गई और उसे देखकर राधिका भी काफी बेचैन हो गई थी। राधिका ने जल्दी से पूछा, रिजल्ट क्या रहा? वो काफी बेचैन हो रही थी क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि जब मालविका प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने पूरी सिक्योरिटी के साथ उसका एमनियोसिंथेसिस टेस्ट करवाया था और उसमें साबित हो गया था कि उसके पेट में पल रहा बच्चा आदर्श का ही था। एक पल के लिए राधिका के मन में एक विचार आया। उनकी आंखों में चमक थी। जब टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव था तो फिर ऋषिका ने ये क्यों कहा कि वो आदर्श की बेटी नहीं है? श्रुति ने उसकी बेचैनी को समझते हुए कहा, राधिका हमें 3 दिन वेट करना पड़ेगा। 3 दिन का इंतजार काफी लंबा था। हालांकि राधिका काफी कुछ सोचकर बैठी थी, लेकिन उन्होंने मन ही मन खुद को समझाया कि अब वो रिपोर्ट का इंतजार करेगी और उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेगी। वहीं दूसरी तरफ ऋषिका घर वापस आ गई थी। इस वक्त वो वसुधा की विला में अपने कमरे में थी। उसने अभिमन्यु को मैसेज कर दिया था कि वो वापस आ गई है, तो उसे लेने आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सामने से अभिमन्यु ने कोई जवाब नहीं दिया। ऋषिका बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही थी। उसने देखा अभिमन्यु ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया था, तो वो थोड़ा बेचैन होकर बोली, इतना भी क्या बिजी है जो एक रिप्लाई भी नहीं दे सकता? क्या सच में फंस गया है? ये भी रिप्लाई नहीं दे सकता तो क्या मैं पृथ्वी से बात कर सकती हूँ?
ऋषिका ने तुरंत पृथ्वी को मैसेज किया, मिस्टर राजवंश कहाँ है? क्या वो आज रात को घर आएंगे? नहीं, वो आज रात घर नहीं आ पाएंगे, किसी मुश्किल में फंस गए हैं, पृथ्वी ने तुरंत जवाब दिया। क्या मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ? ऋषिका ने पूछा। नहीं, आप इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकती हैं, पृथ्वी ने जवाब दिया। न जाने क्यों ऋषिका अभिमन्यु को लेकर इतना सोच रही थी। पृथ्वी के मना करने के बावजूद उसने फिर से पूछा, मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो हर एक फील्ड में अच्छे हैं, आप एक बार बताकर तो देखिए। सॉरी मिस सिंघानिया, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, आप मिस्टर राजवंश के आने पर उनसे ही पूछ लीजिएगा, पृथ्वी ने जवाब में लिखा। पृथ्वी के मना करने पर ऋषिका का मूड ऑफ हो गया। वो मुंह बनाकर बोली, ऐसा भी क्या हो गया जो बता नहीं सकता? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका कहीं और अफेयर चल रहा है? अचानक ऋषिका के दिमाग में पुरानी बातें चलने लगी। आजकल अभिमन्यु रात को घर पर ही रहता था, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में थी और वसुधा की देखभाल कर रही थी तब अभिमन्यु रात को कम ही घर आता था। जब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था और उसने आखिरी रात हॉस्पिटल में बिताई थी तब भी अभिमन्यु उसके पास नहीं आया। मुझे क्यों बुरा लग रहा है? अगर उसका कहीं अफेयर चल भी रहा है तो उसकी हरकतें देखकर तो यही लगता है, ठीक से बात नहीं करता है, हर बात की सफाई देता है, ऐसा भी क्या काम है जो रात को भी करना पड़ता है? ऋषिका ने मायूस होकर कहा। अभिमन्यु का अफेयर होने का सोचकर ही उसे बुरा लग रहा था। उसने कुछ दवाइयां ली और सोने चली गई। अगली सुबह ऋषिका लगभग 9 बजे तक सोई रही। वो उठकर बाहर गई तो निवेदिता और वसुधा बाहर एक साथ गार्डन एरिया में थी और हाउस हेल्पर को पौधों की देखभाल के लिए इंस्ट्रक्शन दे रही थी। ऋषिका ने वहां जाकर बेपरवाही से पूछा, क्या मिस्टर राजवंश ऑफिस चले गए हैं? ऑफिस तो वो तब जाते ना जब कल रात को घर आते, कल रात वो घर भी नहीं आए थे, निवेदिता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया। अचानक ही ऋषिका के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसने जल्दी से मोबाइल चेक किया तो देखा अभिमन्यु ने उसका मैसेज पढ़ा तक नहीं था। ऋषिका को परेशान देखकर वसुधा ने अपना फोन निकाला और हल्के गुस्से में बोली, उस लड़के को मैंने इतनी बार कहा है कि दिन में कितना भी काम करे लेकिन रात को टाइम से घर आ जाए, अगर ऐसे ही रात भर गायब रहेगा तो फिर बच्चे कैसे होंगे? वसुधा अभिमन्यु को कॉल लगाती उससे पहले अभिमन्यु वहां पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर थकावट थी और पूरी रात जागने की वजह से आंखें लाल हो गई थी। अभिमन्यु उनके पास आकर बोला, दादी इम्पोर्टेंट काम में फंसा था और अभी भी सिर्फ चेंज करने के लिए ही आया हूँ, कुछ देर रेस्ट करने के बाद वापस जाना होगा। इतना कहकर अभिमन्यु अंदर जाने लगा। तभी उसे ऋषिका वहीं दिखाई दी तो वो ऋषिका से बोला, सॉरी कल रात कुछ ज्यादा ही बिजी था तो मोबाइल तक चेक करने का टाइम नहीं मिला। ऋषिका ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया था। हालांकि उसे अभिमन्यु पर अभी भी शक हो रहा था पर उसने अभिमन्यु से कुछ नहीं पूछा। अभिमन्यु के अंदर जाने के बाद ऋषिका ने दादी से कहा, दादी मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा, आने में देर भी हो जाएगी, मैंने मिस्टर राजवंश को भी बता दिया है, कितनी भी देर हो जाए लेकिन रात बाहर नहीं बितानी है, मैं उस लड़के से भी बात करूंगी और उसे डांटने वाली हूँ, वसुधा ने ऋषिका से सख्त अंदाज में कहा। ऋषिका ने सिर हिलाकर उनकी बात पर हामी भरी और फिर वहां से चली गई। उसने सबसे पहले अपने कंपनी में कुछ काम किया और उसके बाद वो प्रोफेसर मिलर के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए चली गई। ऋषिका को ज्यादा तड़क भड़क पसंद नहीं थी तो उसने पार्टी के हिसाब से भी काफी सिंपल ड्रेस पहना था। वो एक बेज कलर का शॉर्ट फ्रॉक जो स्लीवलेस था, उसने बालों को स्ट्रेट करके अपने दोनों साइड आगे की तरफ किया। वहीं अभिमन्यु तैयार होकर बाहर आया। अभिमन्यु अपनी गाड़ी की तरफ जाने से पहले वसुधा के पास बात करने के लिए जाने लगा। उसने देखा नक्श और आयशा वहीं पर थे। नक्श ने ब्रांडेड व्हाइट सूट पहना हुआ था तो उस मैच करते हुए आयशा ने भी व्हाइट कलर का ब्रांडेड वन पीस शॉर्ट ड्रेस पहना था। आयशा ने मुस्कुराते हुए वसुधा से कहा, बड़ी दादी हम लोग हमारे कॉलेज के किसी प्रोफेसर के बर्थडे पार्टी पर जा रहे हैं, आपको पता है वहाँ पर ऋषिका और उसका पति भी आने वाले हैं। आयशा की बात सुनकर अभिमन्यु के कदम वहीं पर रुक गए थे। वो धीरे से बड़बड़ाकर बोला, क्या मैंने ठीक सुना? इसने अभी अभी कहा कि इशिका का पति आने वाला है। अभिमन्यु परेशान हो गया था, उसे जाने की जल्दी थी लेकिन अब वो सब कुछ भूल चुका था। वहीं वसुधा के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। वसुधा ने आयशा से कहा, पहले क्यों नहीं बताया कि वो लड़का भी मेरी बहू के साथ जा रहा है? तुम चारों साथ ही चले जाओ ना, फैमिली एक साथ रहती है तो अच्छा लगता है। नहीं दादी, आप गलत समझ रही हैं, चाचू इशिका के हस्बैंड नहीं है। इशिका पहले से शादीशुदा है और कल हमने सिंघानिया विला में उसके हस्बैंड को देखा भी था, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक ही अभिमन्यु के चेहरे के भाव सख्त हो गए। वो दिल ही दिल में काफी कुछ महसूस कर रहा था। उनकी तरफ बढ़ते हुए अभिमन्यु ने आयशा की तरफ सख्त निगाहों से देखा तो आयशा की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। अभिमन्यु को देखते ही आयशा ने तुरंत सफाई देनी शुरू कर दी। मिस्टर राजवंश, मैं सच कह रही हूँ, इशिका का हस्बैंड एक लेबरर है, वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है और कल वो उसके साथ डिनर के लिए सिंघानिया मेंशन में आया भी था। अभिमन्यु को लगा जैसे उसकी सांसें अटक गई हों। क्या वो सब इशिका को इतना छोटा समझते थे कि वो किसी भी राह चलते इंसान से शादी कर लेगी? कल रात अभिमन्यु के अचानक चले जाने के बाद से उसकी इशिका से बात नहीं हुई। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और आयशा से पूछा, रियूनियन पार्टी कहाँ हो रही है? क्वींस होटल में, आयशा ने कहा। वो आगे कुछ कहती उससे पहले अभिमन्यु वहां से निकल गया। अभिमन्यु गाड़ी के अंदर जाकर बैठा और उसने सख्ती से कहा, हम राजवंश एम्पायर नहीं चल रहे हैं, तुरंत अभी गाड़ी को क्वींस होटल में लेकर चलो। उसके बाद अभिमन्यु ने अपने मन में कहा, आखिर कौन है वो इंसान जिसे सब इशिका का पति समझ रहा है? कहीं वो मिस सिंघानिया का बॉयफ्रेंड तो नहीं? अभिमन्यु के दिल में कई सवाल थे जिनका पता लगाने के लिए वो इशिका के पीछे जा रहा था।